ओम शांति। चैतन्य दर्शनीय मुहूर्त, आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करते हैं। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। 1962 में आपने अपनी मेडिकल की स्टडीज पूरी की और आपको बाबा का ज्ञान मिला और फिर अलौकिक पढ़ाई भी आरंभ की और 1966 में बाबा की राय सलाह से, मार्गदर्शन से सेवा केंद्र भी खोला और क्लिनिक भी खोली और दोनों प्रकार की सेवाओं में अपने आप को व्यस्त किया। फिर 1971 में बाबा ने आपको विदेश सेवा अर्थ सेलेक्ट किया, तो 1971 से 78 तक विदेश की धरनी में अलग अलग देशों में, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि विविध देशों में आपने भ्रमण करके सेवाएं की, बाबा के बच्चे निकाले, सेवा केंद्र खोले और फिर 78 में आपने ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपना बेस बनाया और फिर 78 से लेकर 2008 तक सिडनी में रहकर एशिया पैसिफिक रीजन में सेवाओं का विस्तार किया, जिसके अंतर्गत 17-18 देश है जहां बाबा के बच्चे भी निकले हैं वारिस और साथ साथ बहुत सेवा केंद्र भी खुले हैं। और फिर तो 2009 में बाबा ने आपको भारत बुला लिया, ज्ञान स्रोत अकेडमी का डायरेक्टर पद संभालने के लिए दिया और समय के साथ साथ जिम्मेवारियां कंधों पर बढ़ती गई। आज हमारे दीदी यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं, लेकिन जितनी ही जिम्मेवारियां अधिक हैं उतना ही दीदी लाइट रहते हैं, उतना ही दीदी उपराम रहते हैं, उतना ही अपनी अव्यक्त स्थिति के, बाप समान स्थिति के बहुत करीब रहते हैं। तो हम सभी जानते हैं परमात्मा जो हमारे परम सद्गुरु हैं वो तो है ही रहम दिल कल्याणकारी, तो हम भी अपने परम सद्गुरु के समान रहम दिल कल्याणकारी कैसे बने, हम उसके लिए मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे दीदी के प्रैक्टिकल जीवन के अनुभवों से। आदरणीय दीदी जी
ओम शांति। बाबा ने हमें अपना परिचय दिया और हम सभी को हमेशा उमंग रहता है कि हम सबको बाबा का परिचय देवें, सेवा का सबको शौक, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी शौक है तो बच्चों को भी शौक होता है। कई बार स्टेज पर छोटी छोटी कुमारियों को साड़ी पहनाकर भाषण कराती है बहने, तो बच्चों को भी ट्रेनिंग देती है। अभी हमें अपने आप में देखना है कि मैं जो सेवा करती हूं उस समय मेरे दिल में राम दिल का भाव है या नाम मान शान का इच्छा है। क्योंकि कई बार स्पेशली टीचर्स कॉम्पिटिशन कंपैरिजन कि हमें उनसे सेवा बढ़िया करनी है, ज्यादा स्टूडेंट बनाने हैं। तो ये भाव ना हो, परंतु बाबा कहते हैं देखो कितने दुखी लोग हैं, चाहे उनके पास धन दौलत है, मोटर गाड़ी है, मकान है बड़े बड़े, परंतु सुख नहीं। तो इसलिए उनकी पुकार सुनो और उनको मदद करो, चाहे मनसा वाचा अपने एग्जाम्पल द्वारा सेवा करते रहो। तो कल भी बाबा ने कहा जैसे मैं अपकारियों पर उपकार करता हूं, मुझे गाली देने वालों को भी मैं रहम दिल बनकर पावन मनाता हूं, स्वर्ग के वर्षे के लायक बनाता हूं। आप लोगों भी ऐसे करो, गाली देने वाले, निंदा करने वाले, उसके ऊपर भी रहम दिल मनो, गुस्सा नहीं करो। क्या है, क्यों गाली देता है, क्यों हमारा अपमान करता है, बदनाम करता है, उसमें सद्गुण नहीं है, तभी तो अवगुण के वश होकर ऐसे करता है। तो उनके ऊपर भी रहम दिल बनो। तो हमारी जितनी रूहानी दृष्टि, रूहानी प्यार होगा, तो सचमुच गाली देने वाले को भी गले लगाएंगे। दुश्मन को दुश्मन नहीं समझेंगे, मित्र समझकर प्यार करेंगे, उनकी मदद करेंगे। और सारी दुनिया में सब कौन है, विकारी हिंसक, उनके ऊपर भी रहम करो, उनके प्रति भी शुभ भावना शुभकामना रखकर उनको उठाने की कोशिश करो। बाबा कहते गिरे हुए को लात नहीं मारो, प्यार से उनको उठाओ। हमारी दृष्टि बेहद की होनी चाहिए, ऐसे नहीं मेरे परिवार की सेवा करनी है, मेरे सेंटर की सेवा करनी है, मेरे शहर की सेवा करनी है, नहीं। बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दिया है, विश्व कल्याणकारी। तो इसलिए यही भावना रहे कि मुझे सारे विश्व का कल्याण करना है। और वो मनसा सेवा से ही हो सकता है, क्योंकि सारे विश्व में तो घूमेंगे नहीं हम। तो संडे को तो हमने स्पेशल रखा है वर्ल्ड मेडिटेशन आवर, परंतु सवेरे अपने लिए योग करो, अपनी उन्नति के लिए अमृत वेला। और शाम को हम विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैला सकते हैं। और बाबा ने कल भी काफी जोर दिया, फालतू बातें मत सुनो। यदि सुन भी लिया, बड़ों को बताओ, ताकि बड़े उनको सावधानी दे। और उनकी पुरानी आदतें मिट जाए। हमारा काम क्या है? पढ़कर पढ़ाना, ज्ञान सुना, औरों को सुनाना है। व्यर्थ बातें न सुननी है न बोलनी है। अब विश्व कल्याणकारी बनने के लिए हमारी स्थिति बहुत ऊंची चाहिए, चाहे मनसा सेवा करनी है तो भी हमारी स्थिति इतनी ऊंची होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें पावरफुल योग करना है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। और व्यर्थ बिल्कुल ना हो। जब व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ बनेंगे। और व्यर्थ मुक्त बनने के लिए हमें ड्रामा पर अडोल रहना है। पास्ट जो हुआ फिनिश, पास्ट कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। प्रेजेंट जो हो रहा है अच्छा हो रहा, और फ्यूचर में जो होगा बहुत अच्छा होगा। और जितना बाबा की छत्र छाया में रहेंगे हम निश्चिंत रहेंगे। दूसरा, व्यर्थ चलता है यदि हमें कोई इच्छा हो, कोई अच्छा लगता है। जिनको खाने का शौक होगा ना, कहेगा बहुत दिन हुआ पानी पूरी नहीं खाई है, पानी पूरी खाए, दही वड़ा खाए, गुलाब जामुन खाए। तो खाने की इच्छा होगी तो व्यर्थ चलेगा, कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कौन बनाएंगे, आदि आदि। जिसको मोटर बाइक का शौक होगा ना, रास्ते में देखते रहेंगे कौन सी मोटर बाइक है, कौन सी अच्छी है, क्या है आदि आदि। जिसको कार का शौक होगा वो कार के मॉडल देखते रहेंगे। जिसको मोबाइल का शौक होगा सोचते रहेंगे कि हमारे मोबाइल फोन में फोटो लेने की फैसिलिटी होनी चाहिए, ईमेल की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं साधन है, यूज करो, पर साधन नहीं है, इच्छा नहीं रखो। नहीं तो सोचेंगे कहाँ से खरीदना है, कहाँ सस्ता मिलता है, किसी को अच्छी साड़ी देखी पूछेंगे कहाँ से ली, कितने में ली आदि आदि। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बेहद का वैराग्य हो, वैराग्य कैसे होगा, कल सत्युग में क्या होगा ये क्लियर बुद्धि में हो। कल हमारे पास विमान होगा, आज की मोटर गाड़ी मोटर बाइक क्या है, कल हमारा सोला श्रृंगार होगा, लक्ष्मी नारायण को रोज नए नए कपड़े मिलेंगे और सब कुछ होगा, महल माड़ी फाउंटेन घर में, और कितनी मेड्स होंगी उनकी नौकरान, नौकर चाकर कितने होंगे। जो पीछे से आते हैं आगे बैठो, और थोड़ा आप लोग आगे आओ, ये पीछे वाले हैं ना आते हैं पीछे, और पीछे ही बैठना उनको अच्छा लगता है। तो वैराग्य होगा तो त्याग करना सहज होगा और इच्छा नहीं रहेंगे। पावरफुल स्टेज बनाने के लिए हमें श्रीमत का पूरा पालन करना, अमृत वेला सिर्फ नियम से नहीं, पावरफुल लक्ष्य हो कि हमें आज बाबा से क्या शक्ति लेनी हो। काम काज करते बाबा कहते हैं योग लगाओ, कर्मयोगी बनो। तो सिर्फ कर्म नहीं करो पर कर्म के साथ योगी भी बनो। दूसरा मुरली, जहां तक हो सके सेंटर पर जाओ, वहां के वाइब्रेशन का लाभ मिलेगा, संग का लाभ मिलेगा और नियमित रह सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, स सवेरे उठने में देरी हो गई, मुरली का टाइम मिस हो गया, समझेंगे सारे दिन में मुरली तो पढ़नी ही है ना, पढ़ लेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। दादी जान की इतनी उम्र में भी मुरली पढ़े बगैर ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, और दादियां दादी जानकी को ने पूछा बाबा को या मम्मा को कि हम क्या करें ज्ञान योग में आगे बढ़ने के लिए। बाबा ने कहा 18 बार पढ़ो। तो यज्ञ में रहते और तो कोई काम नहीं होता था, 18 बार पढ़ती थी। दादी प्रकाशमणि कितना भी बिजी होती थी, मुरली पढ़े बिगर सोती नहीं थी। उसके कमरे में मोहिनी बहन आती थी, रहती थी। यदि मोहिनी बहन जल्दी आ गई तो दादी क्या करती थी, टॉर्च लेकर भी मुरली पढ़ती थी। तो इसलिए अभी तो कितनी फैसिलिटी, फोन पर मुरली मिल गई, आईपैड पर मुरली मिल गई, पीस ऑफ माइंड अवेकनिंग चैनल सब मुरली देते हैं, जल्दी चाहिए तो जल्दी सुन सकते हैं। तो इसलिए जब तक आत्मा को मुरली का खुराक नहीं दिया, शरीर को ब्रेकफास्ट नहीं देना है। फिर सात्विक भोजन अपने हाथ से या ब्राह्मणों के हाथ का ही खाना है। इंडिया में क्या होता है, कहां भी जाएंगे पहले चाय नाश्ता देंगे। नाश्ता बना नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसी समय पकोड़े बना देंगे। पकोड़े बनाने में क्या टाइम लगता है, और ना खाओ तो नाराज हो जाते हैं, स्पेशली घर वाले कहेंगे सारी जिंदगी हमारे हाथ का खाया आ रहा है, अभी हम शूद्र हो गए क्या, तुम ब्राह्मण बन गए। परंतु जितना नियम पालन करेंगे, कहते हैं अन्न जैसा वन मन, जितना अन्न शुद्ध होगा मन भी शुद्ध होगा। विदेश में बहुत अच्छा, फोर्स नहीं करते। माँ बाप भी लड़के घर में है, कहेंगे तुमको अपना पकाना है पकाओ खाओ। तो कई भाई भी खाना पकाना सीखते, हमारे पास कई भाई सेंटर चलाते हैं और घर इतना साफ रखते हैं, क्योंकि एक सेंटर में बाबा के कमरे में जाने के पहले किचन से पास होना था और भाई लोग इतना साफ रखते थे, जो माताएं कहती है भाई इतना साफ रखते हैं किचन। और जिन्हों को खाने का शौक होता है क्या करते हैं, बनाना भी सीख जाते हैं। तो विदेशी जब यहां आते थे, किचन में जाते थे टोली डिपार्टमेंट, और कैसे जलेबी गुलाब जामुन आदि आदि बनाते हैं सीख गए। उन दिनों में तो कोई रेडीमेड वो नहीं मिलता था ना, अभी तो क्या है, ढोकरे का भी रेडीमेड मिलता है, गुलाब जामुन का भी रेडीमेड मिलता है, जलेबी का भी रेडीमेड मिलता है। उन दिनों में 70s में यहाँ आकर सीख के जाते थे, वहाँ जाकर बनाते थे। और एक एक किचन में दो चार कुकबुक तो होंगे। कुकबुक खोली, रेसिपी देखी, बना लिया। और हमारे पास एक बहन थी जो पार्लियामेंट हाउस में एमपी के साथ सेक्रेटरी थी। उसको पार्टी का आयोजन करना पड़ता था अपने बॉस के लिए, तो सबके लिए सब ऑर्डर करते थे, लेकिन अपने लिए फ्रूट प्लेट। और वहां तो क्या करते हैं फ्रूट प्लेटर में, कोई लाल कोई हरा कोई ब्लू कोई सफेद कोई पीला, ऐसे फल अरेंज करके बहुत खूबसूरत प्लेट बनाते हैं। तो उसके बाजू वाला बैठकर कहता है तुम्हारी प्लेट तो बहुत अच्छी लगती है। और वो बहन सेंटर पर रहती थी। क्रिसमस पर क्या होता है, वहां कहते हैं पार्टी रखते हैं ना, ब्रिंग योर ओन प्लेट, फिर सब शेयर करते हैं। तो वो बहन न्यूजीलैंड में सेंटर पर रहती थी, काफी गुजराती माताएं, तो माताएं मुठिया ढोकरा आदि आदि बनाकर देती थी, वो ले जाती थी, खुद वो ही खाती थी, बाकी सब वो भी खाते थे, दूसरा भी खाते थे। और एक दो भाई ज्ञान में आते थे, उसकी मां ज्ञान में नहीं थी। जब घर जाते थे मां के हाथ का सूप भी नहीं पीते थे, कहते मां तुम्हारी मुंह उसमें पड़ा है ना। मां कहती थी मैंने ब्रेड टिन नया लिया है तुम्हारे लिए, खास ब्रेड बनाई है सूप बनाया। मां बहुत चिढ़ती थी मेरे ऊपर भी, कहती है तुम ऑस्ट्रेलिया क्यों आई हो, डॉक्टरों की तो इंडिया में बहुत जरूरत है। तो जितना श्रीमत का पालन करेंगे, कि सबसे बड़ी बात तो है ब्रह्मचर्य, शादी शुदा माताओं को अत्याचार सहन करना पड़ता है। बहुत थोड़े हैं जो कहेंगे जो करना है करो। अभी अभी 5:30 बजे मेरे पास एक माता का फोन आया, मैं समझती हूँ गाजियाबाद से ही थी। वो कहती है 7 साल तो मेरे पति ने मुझे ब्रह्मचर्य पालन करने दिया, पर 7 साल के बाद अभी कहता है, सब परिवार को कहा कि मैंने इसको 7 साल से हाथ नहीं लगाया है, तो सभी झगड़ने लगे। कहता है ब्रह्मा कुमारी में जाना नहीं है, और ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना है, पत्नी बनकर रहना है, मैं जहां जाऊं आना है, खाना मैं जो खाता हूं खाना है, क्या करूं। सूरज भाई को फोन किया उसने, सूरज भाई कहे योग लगाओ, मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं विजयी हूं, मैं शिव शक्ति हूं आदि आदि। और हमें बहुत पॉजिटिव रहना है, हर एक सिचुएशन की दो साइड होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, हमें पॉजिटिव रहना है। हमारे समय संकल्प ध्यान बोल सबकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि संगम का ये जो ईश्वरीय खजाना या कुदरत का हमें मिला है खजाना, तन मन धन आदि, व्यर्थ नहीं जाना। एक संकल्प एक सेकंड व्यर्थ न जाए। और नष्ट मोह बनना, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है के नियम पालन करने के लिए घर छोड़ना पड़ता। इंडिया में सहज नहीं है, विदेश में तो माताएं कमाती है तो घर भी छोड़ना पड़े, बच्चों को भी छोड़ना पड़े। हमारे पास एक माता आती थी, 2 बच्चे थे और पति एकदम विरुद्ध था, और पति का बच्चों में मोह था, तो माता ने झगड़ा करने बजाय पति को और बच्चे को दोनों को छोड़ दिया, जाकर कमाकर अपना रहने लगे। पर नष्ट मोह बनना पड़े। और हमारा फुल स्टॉप पावरफुल होना चाहिए। व्यर्थ है पास्ट है फुल स्टॉप। मन को बिजी रखो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, मुरली रिवाइज करो, सेवा करो, योग लगाओ, ताकि फालतू विचार ना आए। पर मत सुनो, पर दर्शन नहीं करो। आदत है ना, जहां भी जाते हैं, जिसको भी देखते हैं, क्या करते हैं, क्या पहना है, किसके साथ जाते हैं आते हैं, के पूछेंगे आज क्या खाया क्या किया, तो पर दर्शन नहीं करो, पर चिंतन मत करो। क्योंकि कईयों को आदत होती है, खास भक्ति करते करते भी गांव में क्या चल रहा है, कौन मरा, कौन जन्मा, किसने शादी की, कौन भाग गया, मंदिर में भी वही चर्चा करेंगे सेवा करते करते। फोन पर भी वही चर्चा, क्या हुआ उसका, क्या हुआ उसका, क्या हुआ, कैसे हुआ। और आज का तो इंटरनेट फ्री है, सोशल मीडिया पर इतना बिजी रहते हैं जवान लोग, सारी रात फोन पर। तो ये देखना है, रात को हम टाइम पर सो जाए, सवेरे टाइम पर उठ जाए। और संग का ध्यान रखना है। कहते हैं न सत्संग तारे कुसंग बोड़े, संग का ध्यान रखो। ऑस्ट्रेलिया में जो ज्ञान में आए ना, जो ज्ञान में आए अपने मित्रों को ज्ञान में ले आए, और ज्ञान में आने के पहले सभी ने सब ड्रग्स का प्रयोग किया था, खास मरवाना, गांजा कहते हैं ना हम लोग, मरवाना। तो शुरू शुरू में तो उन्होंने पांडव भवन बनाए, बहुत चार पांच भाई साथ में रहकर, सिंगल थे तो साथ में रहकर खाना पकाना सहज हो जाता है ना, शॉपिंग करना, खाना पकाना, काम काज सब बांट देते हैं। तो काफी शक्ति भवन पांडव भवन थे, स्पेशली पांडव भवन में क्या हुआ, एक भाई ने शुरू किया मरवाना, संघ में चारों ने ज्ञान से छुट्टी ले ली। इसलिए बाबा कहते हैं संघ का ध्यान करो, और मामा बाबा को फॉलो करना है अपनी उन्नति के लिए। हमारे सामने वो है मामा बाबा, भल आप में से किसी ने नहीं देखा होगा, मम्मा बाबा को किसने देखा है, कोई एक भी नहीं। तो मम्मा बाबा को तो देखा नहीं, पर बायोग्राफी तो पढ़ी होंगी दादियों की, मम्मा बाबा की, कि कैसे उन्होंने पुरुषार्थ कर अपना जीवन ऐसा बनाया। मम्मा बाबा के सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, खुद एग्जाम्पल बना। हमारे सामने तो कई एग्जाम्पल है, दीदियां दादियां। दादी प्रकाशमणि को कितनों ने देखा है? काफी। दादी जानकी को? बहुतों ने। तो उन्हों को तो देखा है ना, उनको फॉलो करना है। तो इसी रीत से अपने जीवन को ऐसा ऊंच बनाना। तो हमें देखना है कि हमारा बाबा में निश्चय पक्का होना चाहिए, तभी तो योग लगेगा, धारणा होंगी, सेवा होंगी। तो बाबा में, ड्रामा में और अपने में निश्चय पक्का हो। और योग के लिए बाबा ने हमें कहा 5 फॉर्म की ड्रिल करो। परम धाम से सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हम कैसे रहे वो मनन चिंतन करो। और हमेशा डबल लाइट रहना है, योग पावरफुल रखने के लिए डबल लाइट रहना है। कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं, बाबा जिम्मेवार है, मैं निमित्त हूं, करावनहार बाबा, ये बुद्धि में पक्का होना चाहिए। और आत्मभान में रहना है, शरीर भारी है, आत्मा तो हल्की है, तो जितना देही अभिमानी रहेंगे, लाइट रहेंगे। एक नामी, एक से सर्व संबंध। गाते हैं भक्ति में, मेरा तो एक दूसरा न कोई। वहां मीरा ने गाया मेरा एक गिरधर गोपाल, हम कहते हैं मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। परंतु शिव बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना है। अनुभव किया है किसने? माता का अनुभव किया है थोड़े, पिता का, टीचर, गुरु, साजन, भाइयों ने किया है साजन, बालक, मित्र। तो एक्सपेरिमेंट करना है। बाबा कहते हैं योग का प्रयोग करो, जिसने अनुभव नहीं किया है उसको क्या करना है, ऐब रखना है कि आज सारे दिन में मुझे बाबा को फ्रेंड बनाकर चलते फिरते उनके साथ बातचीत कर, जैसे फ्रेंड होते हैं ना, तो जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे, कपड़े भी समान पहनेंगे, खरीदारी करने भी साथ में जाएंगे, सुख दुख की बात एक दुख को करेंगे। कभी खुशी की बात है पहले फ्रेंड को सुनाएंगे, कभी दुख की बात है फ्रेंड को सुनाएंगे। बाबा को सुनाओ, दूसरे किसी को नहीं सुनाओ। घर वालों को इधर उधर पीछे सुनाओ, पहले बाबा को सुनाओ। गुरु समझकर बाबा से राय लेनी हो तो जितनी हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर होंगी, बाबा की टचिंग कैच करेंगे। तो हमारी टचिंग पावर, कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। तो बाबा से जो मिलेगा औरों को दे सकेंगे। तो प्रयोग करने से अनुभव होगा, तो क्या होगा, संबंध पक्का हो जाएगा, तो लौकिक से मोह टूट जाएगा। नहीं तो क्या है, हम लोग क्या करते रहते हैं, लौकिक से पूरा सहारा लेते रहते हैं। अभी एक बल एक भरोसा, बाबा से ही सब सहारे लेने हैं। इकोनॉमी से चलना, मन वचन कर्म तन मन धन से इकोनॉमी, ऐसे नहीं जो पसंद आया खरीद लिया। घर में कितनी भी साड़ी होंगी, ये अच्छी लगती है खरीद ली, तो ये ना हो। हम विमेन्स कॉन्फ्रेंस में गई थी नीचे, तो एक गेस्ट स्पीकर थी, कहती थी कोरोना काल में मैंने सिर्फ 3 ड्रेस से काम चलाया, मेरा सारा कबट ऐसे ही रहा। तो हम चला सकते हैं ना। बेघरी पार्ट में उन्होंने क्या किया, एक या दो ड्रेस से काम लिया। रोज रात को कपड़े धोते थे, प्रेस भी नहीं थी, तो क्या करते थे, कपड़े धुलाए करके फिर तकिए के नीचे रख देते थे। हाँ, और ऐसे भी होता था कि पत्थर को तकिया बनाकर सोना पड़ता था, खुले में सोना पड़ता था। गंगे दादी और मनोहर दादी गंगा तट पर गए थे, कमरा वगैरह नहीं था, सिर्फ तीन तरफ दीवार थे, वहां सोना पड़ता था और एक पहलवान था, वो देखता था कि ये दोनों बहनें अकेली है। उसको लगा ये कोई स्पेशल है देवियां, कहा ये सचमुच देवियां होंगी तो मैं पहलवानी की जो रेस है उसमें जीत जाऊंगा, और जीत गया। फिर दादियों को गेहूं चावल घी आदि आदि खूब दिया। तो आज तो क्या है, सब ब्राह्मणों के पास अच्छा पैसा है, जैसे पैसा आया नया फर्नीचर बनाए, नए पर्दे बनाए, नया मकान बनाए, उधार लेकर भी कभी कभी बना लेते हैं। बाबा कहते हैं उधार लो नहीं दो नहीं, एकाग्रता तो जितना वैराग्य होगा एकाग्रता अच्छी रहेंगे, नहीं तो इधर उधर के संकल्प चलेंगे। इसलिए मेडिटेशन की फर्स्ट प्राप्ति है मन पर कंट्रोल, चेक करते रहना है, क्योंकि सारी जिंदगी तो मन को फ्री रखा, अभी तो मन को चेक करते रहना है, इधर उधर तो नहीं भटकता है, घड़ी घड़ी पकड़ के लाना पड़ता है। जैसे बच्चा होता है ना, उनको शौक होता है घूमना रहना, खाना खाने पीने का भी ख्याल नहीं होता है, बस खेलता रहता है। और आज तो कंप्यूटर मिल गया है, बच्चे भी इतने होशियार हो गए हैं, आपसे भी होशियार एक दादा कहता था विदेश में कि मेरे फोन पर उसकी पोती ने क्या किया, 4-5 साल की पोती थी, अपना आवाज भर दिया, कोई फोन करे जवाब दे। एकांतवासी बनना, जब भी फ्री टाइम मिले ऐसे नहीं अपने को बिजी कर दो। एक समय न्यूजीलैंड में क्या होता था, फ्री फोन, ऑकलैंड वेलिंगटन के बीच में भी फ्री फोन, और सब नवसारी के आसपास के लोग, मतलब एक दो को जानते थे, तो जैसे भी फ्री टाइम मिला, क्या हाल है फलाने का, क्या हाल है, कौन मरा कौन जिया, किसने किससे शादी की, कौन किससे भाग गया, यही चिंतन चलता है। तो ये है, टीवी नहीं चलाना है, नहीं तो टीवी का शौक होता है, फ्री बैठे टीवी चलाए, या घर वाले टीवी चलाते बैठ गए। तो ये है कि हम लक्ष्य होना चाहिए ज्ञान योग सेवा। और ज्ञान योग अच्छा होगा, धारणा तो ऑटोमेटिक होंगे, धारणा अच्छी होंगी तो सेवा भी अच्छी होंगी। तो इसलिए हमें राम दिल विश्व कल्याणकारी बनना, जितनों का कल्याण करेंगे बाबा कहते हैं इतनों की दुआएं मिलेंगी, इतना ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति। आधा घंटा योग।
मधुर साज से भरे